नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर लगाई रोक। 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर दो विधेयक लोकसभा में किए गए पेश। विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव। चतरा में गृह सचिव एवं डीजीपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। अफीम विनष्टीकरण और जमीनी स्तर पर हुए कार्यों की समीक्षा की। रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मैकलुस्कीगंज में पारा 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। और हॉकी इंडिया ने रांची में होने वाले हॉकी इंडिया लीग मैचों में दर्शकों के लिए फ्री एंट्री की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रवेशिका परीक्षा की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने 22 जनवरी 2025 तक परीक्षा फल प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा है और पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान कर रिपोर्ट देने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 सदन के पटल पर रखे। केंद्रीय विधि मंत्री ने जैसे ही विधेयक सदन में पेश किए तो विपक्षी दलों ने मत विभाजन की मांग की। 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार बताया और विधेयक जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस विधेयक को संविधान के खिलाफ बताया।
हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का।
श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस अधिनियम पर विपक्ष सुधार की जगह विरोध वाली मानसिकता से काम कर रहा है।
मंत्री जी की मंशा को जो कैबिनेट में उन्होंने कहा था, माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि मैक्सिमम डेलिबरेशन इसके ऊपर, डिस्कशन इस पर होना चाहिए। इतना बड़ा रिफॉर्म सबसे चर्चा के बाद में वो अंगीकार हो, लेकिन विपक्ष विरोध से जिस तरह से किया है, मैं मानता हूं कि ये भारत के विकसित होने की दिशा में लाए गए इस बड़े अधिनियम, एक बार फिर उन्होंने अपनी मानसिकता को उजागर किया है।
वहीं झारखंड से राज्यसभा के सदस्य और भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए शुभ संकेत है।
वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए शुभ संकेत, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस विषय को देश के अंदर, संसद के अंदर लाने का काम किया है, वो स्वागत योग्य है। कुछ लोगों की मंशा कांग्रेस की मंशा साफ नहीं, सर्वदलीय चीजों को एक साथ बैठ करके विचार करते हुए जेपीसी के माध्यम से चीजें सर्वसम्मत बने, ये सरकार का इरादा है और बेहतर इरादा है।
राज्यसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश संविधान सभा के उन सभी सदस्यों का ऋणी है जिन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया। इस बीच उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया।
On 5th of August 2019, abrogated Article 370. निरस्त कर दिया।
सब लोग आके यहाँ बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सिर से बधाई देता हूँ कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।
केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार के 1,36,00,000 रुपए बकाए से इनकार करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसदों से अपील की है कि वे इस बकाए राशि को दिलवाने के लिए संसद में अपनी आवाज बुलंद करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि झारखंड के विकास के लिए इस बकाए राशि की नितांत जरूरत है। इस विषय पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड रॉयल्टी का पैसा केंद्र सरकार से लेने के लिए न्यायिक रास्ता भी अपनाएगा।
9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जब झारखंड के दावे पर मुहर लगाई है और सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी मंशा को स्पष्ट किया है कि 1,36,00,000 करोड़ के बकाए को लाए जाने के लिए हम लोग न्यायिक रास्ता भी अख्तियार करेंगे। झारखंडियों के हक का पैसा जो भारत सरकार के पास मौजूद है वह पैसा हर हालत में हम लोग लेकर आए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में भू राजस्व विभाग के द्वारा कोल इंडिया को पत्र के माध्यम से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिला मुख्यालय में आज विधि व्यवस्था एवं अफीम विनष्टीकरण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, गृह सचिव वंदना डाडेल सहित आईजी अभियान, आईजी सीआईडी, डीआईजी हजारीबाग के अलावा चतरा, लातेहार, हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। इस बैठक में अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और जमीनी स्तर पर विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा अफीम की खेती में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में गोड्डा जिले में धान अधिप्राप्ति का कार्य आरंभ किया गया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
गोड्डा जिले में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 को लेकर कुल 15 लैम्स पैक्स तथा एफपीसी केंद्रों में धान की खरीदारी आरंभ हो गई है। इस बार धान की बेहतर फसल को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से 2,00,000 क्विंटल धान की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताते चले कि गोड्डा जिले में 15 केंद्रों पर जहां धान की खरीदारी की गई है उसमें से मेहरमा, ठाकुरगंज, महागामा, बुआरीजोर, सुंदर पहाड़ी, पोड़ैया हाट, गोड्डा एवं बसंत राय शामिल है। इस वर्ष धान की खरीदारी को लेकर धान का क्रय मूल्य 2,300 रुपया निर्धारित किया गया है तथा 100 रुपया बोनस के साथ कुल 2,400 रुपया किसानों को दे होगा। आकाशवाणी के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री जबकि मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो तथा धनबाद के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। हॉकी इंडिया ने रांची में आयोजित होने वाले हीरो हॉकी इंडिया लीग HIL के सभी मैचों में दर्शकों के लिए फ्री एंट्री का फैसला किया है। यह कदम खेल को देश के हर कोने तक ले जाने और अपने उत्साही समर्थकों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाना हॉकी इंडिया के दृष्टिकोण का हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर लगाई रोक। 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर 2 विधेयक लोकसभा में किए गए पेश। विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव। चतरा में गृह सचिव एवं DGP ने की उच्च स्तरीय बैठक। अफीम विनष्टीकरण और जमीनी स्तर पर हुए कार्यों की समीक्षा की। रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मैकलुस्कीगंज में पारा 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा और हॉकी इंडिया ने रांची में होने वाले हॉकी इंडिया लीग मैचों में दर्शकों के लिए फ्री एंट्री की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।
Thank you.